राधा एक भीख मांगने वाली हालत में राजा के दरबार में गई। राधा की दशा देखकर सभी ने उसे घृणा से देखा और उसके बारे में उपहासात्मक बातें की। किंतु तभी राजा विक्रम सिंह ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और दूध ले आओ। क्षण भर में ढेर सारा दूध राधा पर डाला गया और देखते ही देखते राधा की सुंदरता प्रकट हो गई। सारी कीचड़ धूल मिट्टी हटने के बाद राधा का सुंदर शरीर और रेशमी बाल चमकने लगे। राधा को देखकर सभी दरबारियों के मुंह बंद हो गए और वे सब राधा को लालसा भरी निगाहों से देखने लगे। उनके मन की भावना समझकर राजा विक्रम सिंह ने उन्हें वहां से जाने का आदेश दिया और तुरंत ये घोषणा कर दी कि वह राधा से विवाह करेगा। ये बात धीरे धीरे चारों ओर फैल गई। तभी कुछ दासी राधा को सजाने के लिए अपने साथ ले गई, किंतु राधा को कुछ स्त्रियों की हिचकिचाहट और चीखों की आवाज सुनाई दी। ये जानने के लिए वह उसी ओर गई। वहां राधा को कोई कुछ नहीं बता पा रहा था। राधा ने चारों ओर देखा, ऐसा लग रहा था मानो वहां कोई मेला लगा हो और जो भी स्त्री या युवती पसंद आ जाए वही उसके साथ अत्याचार करता था। राधा सब कुछ समझ गई थी और उसने स्त्रियों के पीछे की कहानी जानने का अपना निश्चय दृढ़ कर लिया था। तारापरी और अमन जो राधा के पीछे थे उन्हें भी वहां की स्थिति का पता चल गया था। राधा ने देखा कि वे दासी राधा को ढूंढते हुए वहां आ पहुंची थीं और बोली, भावी महारानी जी, आप यहां क्या कर रही हैं? कृपया यहां से चलिए। अगर राजा साहब ने आपको यहां देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। यहां केवल कुछ लोगों को छोड़कर और किसी के आने की अनुमति नहीं है। तभी राधा ने देखा कि उसे लेने आई दासियों में से एक दासी कैद में बंद एक स्त्री को देखकर रो पड़ी थी। राधा समझ गई कि इसकी यहां कोई परिचित होगी और राधा को लगा कि ये दासी ही उसे सच बताएगी। ये सोचकर राधा ने उससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मेरे साथ केवल ये एक दासी चलेगी, अन्य कोई नहीं। राधा की बात सुनकर वे दासी एक दूसरे का मुंह देखने लगी और राधा की बात मानने के अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। इसलिए राधा उस दासी को लेकर उस कक्ष की ओर जाने लगी जहां उसे सजाया जाना था। तभी अमन और तारापरी ने अचानक ही पाया कि वे एक विशाल भयानक गुफा में हैं। तारापरी और अमन सोचने लगे कि अभी तो वे दोनों राधा के साथ थे और अब अचानक यहां। तभी उन्हें राजा विक्रम सिंह दिखाई दिया। राजा विक्रम सिंह एक गुफानुमा स्थान पर गया था और वह अपने साथ एक कम उम्र की लड़की को ले गया था। उस लड़की की आंखों पर एक काली पट्टी थी और उसके शरीर पर काले वस्त्र थे। राजा उस लड़की को गुफा में ले गया और अंदर जाकर उसने देखा कि वहां एक काले वस्त्रों में एक व्यक्ति बैठा हुआ था और वह यज्ञ कर रहा था। उस गुफा में चारों ओर खोपड़ियां थीं और साथ ही एक बड़ी शैतान की प्रतिमा भी थी जिसकी वहां घोरी पूजा कर रहा था। वास्तव में राजा विक्रम सिंह को काले जादू पर अटूट विश्वास था। उसे लगता था कि जो कुछ भी उसके पास है वह केवल इस काले जादू और उस अघोरी के कारण है जो उसके पूर्वजों के समय से उसकी और उसके परिवार की रक्षा करता आया था। इसलिए जब भी राजा विक्रम सिंह की कोई इच्छा पूरी होती थी तो वह उस अघोरी को एक कम उम्र की लड़की अर्पित करता था। इस प्रथा के चलते उसने हजारों लड़कियों को उस अघोरी को भेंट में दे दिया था और आज भी वह एक और कुमारी और कम उम्र की कन्या को उस अघोरी के पास भेंट स्वरूप लाया था, क्योंकि उसने राधा को पाने और उसके पास आने की मन्नत मांगी थी जो आज राधा के आने से पूरी हुई थी। अघोरी ने जैसे ही राजा के साथ कन्या को देखा वह शैतानी हंसी हंसने लगा और बोला, लगता है एक और मन्नत पूरी हो गई है तुम्हारी। ले आओ इसको ले आओ, बहुत दिनों से प्यास लगी थी किसी कन्या के शरीर की। ऐसा कहकर वह और तेज हंसने लगा। तब राजा ने कहा, अघोरी बाबा, मुझे राधा मिल गई है, अब मैं उसे विवाह करूंगा और इस देश की महारानी बनाऊंगा। तब अघोरी बोला, अच्छा चलो, बधाई हो राजा, बधाई हो तुम्हें। अपनी होने वाली पत्नी को जरा याद तो करो, हम भी तो देखें ऐसा क्या है उसमें जिसके लिए तू इतना बेचैन हो गया। तब राजा विक्रम सिंह बोला, चिंता मत कीजिए अघोरी बाबा, विवाह करने के बाद मैं उसे आपके पास ही लेकर आऊंगा आपका आशीर्वाद लेने के लिए। ठीक ठीक है, अब तू आज जल्दी से इस कन्या की भेंट हमें अपने हाथों से दे दे। ऐसा कहकर उस अघोरी ने यज्ञ की आग और तेज कर दी और राजा उस लड़की को अघोरी के पास ले आया। वहां अघोरी बार बार लालच भरी निगाहों से उसे देख रहा था। तभी राजा विक्रम ने अपने हाथ के अंगूठे पर एक कट लगाया जिसमें से खून बहने लगा और उसके बाद उसने अपने खून से उस लड़की के माथे पर अभिषेक कर दिया और उस लड़की की आंखों की पट्टी खोल दी। वह छोटी सी बच्ची अपनी आंखों की पट्टी खुलते ही अपने आसपास देखने लगी और ढेर सारी खोपड़ियां और कटे हुए सिर और उसके बिल्कुल पास खड़ा एकदम काला और भद्दा सा अघोरी जिसके दांत एकदम पीले पीले और सड़े हुए थे और दूर से दिखाई देता एकदम काला अंधेरा और एक बड़ी सी भयानक शैतानी की मूर्ति देखकर उस लड़की के मुंह से एक भयानक चीख निकल पड़ी। उस लड़की का डर के मारे बुरा हाल था। उसे चीखते और डरते हुए देखकर उस अघोरी को बहुत आनंद आ रहा था और वह बड़ी ही बेशर्मी से उस राजा के सामने ही उसकी छोटी छोटी छाती पर हाथ फेरने लगा और फिर एकदम से अपने मुंह और नाक से बहुत बुरी तरह से उस लड़की को सूंघने लगा और बोल रहा था, कुंवारी लड़की की खुशबू, हाय हाय, राजा तूने मुझे आज बहुत खुश कर दिया है। मांग ले आज जो कुछ भी तू इस अघोरी से मांगना चाहता है, मांग ले, मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। बता क्या चाहिए तुझे, मांग राजा मांग। ये सुनकर राजा की आंखें चमक उठी और वह बोला, मुझे हर जन्म में राधा का शरीर और ढेर सारी शक्तियां चाहिए। अगले जन्म में ही नहीं, अगले जन्म में भी मुझे राधा का शरीर चाहिए, और मैं जैसे इस जन्म में शक्तिशाली हूँ, आगे की अगले जन्म में भी मुझे यही शक्ति चाहिए। अघोरी उसकी बात सुनकर हंसने लगा और वह बोला, ठीक है राजा, ये तपस्वी तुझे वरदान देता है, तेरी इस राधा का शरीर हर जन्म में तुझे मिलेगा, और जब जब राधा जन्म लेगी उसके आसपास तेरा भी जन्म होगा, और तुम दोनों जब तक जन्म लेते रहेंगे तब तब तू भी जन्म लेगा, और तू हर जन्म में राधा के शरीर का उपभोग करेगा। लेकिन याद रहे राजा, अगर कभी तेरे सामने एकदम पवित्र आत्मा आ गई जिसके अंदर राधा का खून हो और वह तुझ पर वार करेगी तो तेरी मृत्यु निश्चित हो जाएगी, तो तुझे इसके लिए हर जन्म में तैयार रहना होगा। अगर तुझसे कोई युद्ध करेगा तो तुझे उसी वक्त उसके प्राण लेने होंगे। राजा उस अघोरी की बात सुनकर हंसने लगा और बोला, आप चिंता न कीजिए स्वामी, आप देखिएगा मैं किसी भी जन्म में राधा को माँ नहीं बनने दूंगा, हर जन्म में उसे अपने करीब रखूंगा और इसके शरीर का उपभोग करूंगा। ऐसा कहकर वह राजा उस अघोरी का आशीर्वाद लेकर वहां से चला गया, और वह अघोरी राजा के जाने के बाद उस कन्या के एक एक करके सारे वस्त्र उतार कर उसी यज्ञ कुंड में फेंक देता है, और वह उस लड़की को एक बार फिर से देखने लग जाता है और फिर खुद को नग्न करके उसके साथ संबंध बनाने लगता है। क्षण भर में पूरी गुफा उस लड़की की पीड़ादायक चीखों से गूंज उठी। अमन को ये सब देखकर बहुत क्रोध आया। उसका मन कर रहा था कि उस अघोरी की गर्दन पकड़कर उसी यज्ञ कुंड में चला दे जिस यज्ञ कुंड में उसने उस मासूम कन्या के वस्त्र डाले थे। राधा ने उस अघोरी और उस राजा की एक एक बात बड़े ही ध्यान से सुनी थी, और आज जाकर उसे उस परीलोक की राक्षस का सच पता चला था। आज उसने जाना था कि इतनी सारी सुंदर अप्सराओं में से उसने उसे ही क्यों चुना था, क्यों वो हर रात उसके शरीर और आत्मा से छेड़छाड़ करता था। इस अघोरी के वरदान के कारण वह दुष्ट राजा अगले जन्म में एक राक्षस बन जाएगा और उसके पास असीम शक्तियाँ होंगी। आज तारापरी की आंखों पर लगा हुआ हर पर्दा उठ चुका था।
अभी वे दोनों उस गुफा के अंदर थे और अचानक एक आवाज हुई। तभी अमन और तारापरी ने अपने आप को एक सुंदर कक्ष में पाया जहां राधा एक दासी के साथ थी। वे एक भव्य कक्ष में थे जहां हर तरह का आराम मौजूद था। सब कुछ सुंदर और आकर्षक था। उस कमरे की सजावट अद्भुत और अनोखी थी। अमन और तारापरी राधा के बिल्कुल पास थे। राधा ने उस दासी से कहा, मैंने देखा था तुम्हें, तुम उस कैद में मौजूद लड़की को देखकर रो रही थी। क्या तुम मुझे उन स्त्रियों की ऐसी दशा के पीछे की कहानी बताओगी? राधा के मुंह से उस लड़की के बारे में सुनकर वो दासी फिर से रोने लगी। तब राधा ने उसे शांत किया और बोली, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन है। ओह, राधा को ये सुनकर बहुत दुख हुआ और वो बोली, तो तुम मुझे ये बताओ, ये इतनी सारी स्त्रियां युवतियां यहाँ क्या कर रही हैं और कौन लाया है इन्हें यहाँ? तब वो लड़की बोली, वो रानी जी, राजा के सैनिक आसपास के गांवों में लुटेरों का वेश बनाकर जाते हैं, और जो भी स्त्रियां उन्हें मिलती हैं वे सब स्त्रियों को अगवा करके अपने साथ इस महल में ले आते हैं।